Hare Krishna. This class on the glories of Kartik month given in All India Institute of Medical Sciences on 4th October 2016 by myself Prashant Mukund Das.
Kartik mass ke bare mein charcha karne ja rahe hain. To in 12 mahinon mein jo varsh mein aate hain usme se sabse uttam bhakti pradan karne wala jo mahina hai वो चार महीने होते हैं जिसे चतुर्मास कहते हैं. पर इन चार महीनों में से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है कार्तिक. क्यों? क्योंकि जो राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी, उनके पिता वृषभानु महाराज जो कि बरसाना के महाराज हैं, उनकी माता कीर्तिदा, तो जब इनके कीर्तिदा और वृषभानु महाराज के घर में पुत्री उत्पन्न होती है जो कि उनको यमुना के किनारे एक कमल के पुष्प पर प्राप्त हुई थी. उनके घर में कोई पुत्र पुत्री नहीं था, तो उनको भगवान की प्रार्थना करने पर भगवान की कृपा से एक दिन उनको एक पुत्री प्राप्त हुई जो कि कमल के फूल पर लेटी थी और वो सोने के जैसा उनका रंग था. हम गाते हैं ना, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी. तप्त कांचन, तप्त कांचन मतलब सोना और तप्त मतलब पिघला हुआ सोना. तो जो गोल्डन मोल्टन फॉर्म है ना, गोल्ड की मोल्टन गोल्डन फॉर्म, वो कलर है स्वयं राधा रानी का, तप्त कांचन गौरांगी. तो वैसे इस सोने के समान एक सुंदर बालिका उनको प्राप्त हुई और उनको ले आए और उन्होंने उनका नाम रखा राधा रानी. स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा था कि ये भगवान की प्रिय है और ये लक्ष्मी अवतारी है, ऐसा सुनाया उन्होंने. लेकिन असलियत में देखा जाए तो राधा रानी से कई प्रकार की लक्ष्मी निकलती है. सहस्त्र लक्ष्मी राधा रानी के शरीर से प्रकट होती है. तो राधा रानी का एक नाम उनके माता पिता ने रखा जो नाम था कार्तिका. क्या नाम था? तो कार्तिका नाम होने के कारण जो महीना राधा रानी को सर्वश्रेष्ठ प्रिय है, क्योंकि इस महीने में राधा रानी कृष्ण की अत्यधिक सेवा करती हैं, तो ये महीना बन जाता है कार्तिका के नाम से कार्तिक का महीना. मालूम था आपने? तो ये कार्तिका राधा रानी के नाम से इस महीने का नाम है कार्तिक. और एक और नाम है इस महीने का, दामोदर मास. वैष्णव इसे दामोदर, क्योंकि दाम का मतलब है रस्सी और उदर का मतलब है पेट. तो भगवान कृष्ण को उनकी मैया यशोदा ने बहुत ही कम अवस्था में, जब वो छोटे से बालक थे, तो उनको किससे बांधा था? रस्सी से बांधा था. जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि अनंत काल से तपस्या कर रहे हैं, उन भगवान को यशोदा मैया ने उखल से बांध दिया. वो उखल आज भी विराजमान है जिससे बांधा था. आप कभी जाए वृंदावन तो वहां महावन एक जगह है, गोकुल महावन, और गोकुल में महावन में आज भी जिस गोकुल में जिस उखल से बांधा गया था कृष्ण को, वो आज भी उखल विराजमान है वहां पे 5000 साल बाद. कुछ लोग कहते हैं वो नहीं है, नकली है, लेकिन श्रद्धावान भक्त मानते हैं कि वही है. तो उस स्थान पे जब बांधा तो मैया ने किससे बांधा था? रस्सी से. और जब रस्सी को बांधते थे तो बहुत लंबी विस्तार पूर्वक लीला हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसको अगर संक्षिप्त में समझें तो यशोदा मैया दूध उबाल रही थी और कृष्ण जो है उनकी गोदी में बैठे थे और वो चाहती थी कि कृष्ण के लिए जो स्पेशल दूध, जो महत्वपूर्ण एक अलग तरीके का दूध जिसमें से सुगंध आती थी, उस दूध को मैं कृष्ण को पिलाऊं. उनके लिए 9 लाख गायों में से 5 गाय जो है मुख्य गाय थी, और उन गायों का दूध कैसा होता था? सुगंधित. तो सुगंधित गायों का दूध बनाकर उबाल कर उसमें से मक्खन घी सब कृष्ण के लिए निकालते थे. और वो कहती भी थी कि अगर मैं अच्छा घी मक्खन खिलाऊंगी तो मेरा काना दूसरे घर में चोरी करने नहीं जाएगा. हाँ, लेकिन वो मानते नहीं थे, जाते थे चोरी करने के लिए, वो अलग लीला है. तो जब दूध उबलने लगा तो यशोदा मैया ने उठा करके कृष्ण को जमीन पर रख दिया और दूध को उठाने चले गए कहीं दूध बिखर ना जाए. तो कृष्ण नाराज हो गए. क्यों नाराज हो गए? कि मैया ने दूध को ज्यादा प्रेफरेंस दिया मुझसे. अरे जो ब्रह्मांड में शीर सागर है, जो दूध का सागर है, शीर मतलब दूध, आजकल एक ब्रांड भी आता है शीर, शीर सागर जो है, मिल्की वे गैलेक्सी शीर सागर, उस सागर को बनाने वाला मैं हूं और ये भगोना दूध के लिए मुझे जमीन में रख दिया. तो यशोदा मैया यहां पर शिक्षा दे रही है कि भक्त को कैसा होना चाहिए. भक्त को कृष्ण से भी ज्यादा हमको महत्ता देनी चाहिए कृष्ण की सेवा में लगे हुए लोगों को या चीजों को। तो यहाँ पर दूध अगर बिखर जाता तो नुकसान होता कि वो कृष्ण उसको पी नहीं पाते, वो जल जाता, तो कृष्ण की सेवा में वो दूध लग नहीं पाता। और भगवान की सेवाओं में, लीलाओं में हर एक चीज चिन्मय है, हर चीज चिन्मय बोलती है। दूध बोलता है, अरे तुम अपनी माँ के स्तन का दूध पियोगे तो हमें कब पियोगे, हमें भी सेवा में लगाओ, दूध बोलता है। और भगवान के वस्त्र बोलते हैं, कृष्ण हमें कब पहनोगे। और गोलोक धाम में ऐसा ही होता है, भगवान का पीताम्बर, भगवान का मोर पंख, भगवान का सिंहासन, भगवान के पादुका सब बोलते हैं। हमें अभी समझ नहीं आ गया ऐसे कैसे बोल सकते हैं, लेकिन चिन्मय वस्तु है सारी की सारी, उस अप्रकट जगत के अंदर सारी चीजें बोलती हैं। तो कृष्ण यहाँ पर ये यशोदा मैया स्थापित करती हैं कि एक भक्त को भगवान की सेवा में लगी हुई वस्तुएं, जैसे भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद, भगवान के भक्त, भगवान के वस्त्र, भगवान का मंदिर, हाँ इन सब चीजों को बहुत महत्वता देनी चाहिए। लोग सोचते हैं हमें भगवान से मतलब है, बाकी चीजों से मतलब नहीं है। नहीं, बाकी चीजों से भी मतलब है। यशोदा मैया कहती हैं कि भगवान से भी ज्यादा बढ़कर के कौन है, भगवान की सेवा में लगे हुए तदीय वस्तुएं हैं। विष्णु जी, जब पार्वती पूछती हैं शिव जी से कि संसार में सबसे बड़ी आराधना क्या है, तो वो क्या कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम तस्मात परतरम देवी तदिया नाम सम अर्चनम। आराधना नाम सर्वेशाम, जितनी आराधना है उनमें से विष्णु आराधना नाम परम, सबसे परम है विष्णु की आराधना। विष्णु मतलब कृष्ण या राम, विष्णु आराधना नाम परम। और तस्मात परतरम देवी, अगर इसके भी ऊपर देवी कुछ सेवा करना चाहती हो, तदिया नाम समर्चनम, भगवान से जुड़ी हुई जो तदीय वस्तु हैं, जैसे भगवान का नाम, भगवान का धाम, ये भगवान का मंत्र मास, ये जो भगवान से जुड़ी वस्तु अगर इनकी सेवा करें तो कृष्ण ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर कृष्ण को बोले कृष्ण 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 कृष्ण, खुश नहीं होते। अगर बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अगर भगवान के नाम के आगे भगवान के भक्त का नाम लगाएं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भगवान को राधे श्याम, राधा श्याम सुंदर, राधा गोपीनाथ, गोपीनाथ क्यों नहीं बोलते, सीता राम, भगवान के आगे भगवान के भक्तों के नाम आते हैं, यशोदा नंदन कृष्ण, देवकी नंदन कृष्ण, नंद नंदन कृष्ण, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, तो भगवान को अपना नाम डायरेक्ट पसंद नहीं है। तो तदीय वस्तुओं की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे ही तदीय वस्तु है भगवान का मांस। तो फिर जब मैया ने देखा कृष्ण भाग गए हैं, तो पीछे पीछे भागी, कहा कहाँ जा रहा है तू नाराज होकर के। बोला मैया मुझे इतना गुस्सा है कि जितना तुमने मक्खन बनाया मैं सब फोड़ दूंगा, और उन्होंने डंडा उठा के मटकियां फोड़ दी। तो मैया को और गुस्सा आया, कहा अब तो तुम्हारी शरारत इतनी बढ़ गई है कि मैं अब तुम्हें बांध दूंगी ओखल से, और उन्होंने ओखल से बांधने का प्रयास किया। बहुत विस्तार पूर्वक लीला है, इसमें 2-4 घंटे जा सकते हैं, पर हम संक्षिप्त में सुना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बांध देते हैं, तो सारी सखियां ग्वाल बाल सब आ गए, अरे कृष्ण पे इतना इतना बुरा बर्ताव, यशोदा मैया क्या हुआ, बहुत शरारती हो गया है, अब इसे बांधना पड़ेगा। तो मैया ने रस्सी ली, लेकिन वो रस्सी जब भी बांधते थे तो कितनी छोटी रहती थी, 2 उंगली। फिर उन्होंने कहा गांव में रस्सियों की कमी थोड़ी है, सभी गोपियों ने अपने अपने घर से रस्सियां लाके दी, उन्होंने सारी रस्सियों की एक बड़ी रस्सी बनाई, फिर भी वो रस्सी 2 उंगली छोटी। फिर ग्वाल बाल अपने अपने खेतों से रस्सियां लेकर आए, उन रस्सियों को बनाया गया, और फिर कृष्ण को उस छोटी सी ओखल पे छोटे से कृष्ण को बांधा जा रहा है, दाम के द्वारा उधर को बांध रहे हैं, लेकिन फिर भी रस्सी 2 उंगल छोटी है। और ब्रह्मा जी देख करके हंस रहे इस लीला को। वो योगी जन कई लाखों सालों से तपस्या कर रहे हैं, वो कृष्ण को नहीं बांध पाए अपने हृदय में, यशोदा मैया इस भौतिक रस्सी से कृष्ण को बांधना चाह रही है, मैया मुश्किल है, कृष्ण नहीं बंधेंगे। कृष्ण बंधते हैं तो अपनी इच्छा से बंधते हैं, किसी के बांधे नहीं बनते हैं। उनकी इच्छा होगी हाँ एग्री, तो वो छोटे से धागे से बन जाएंगे, और नहीं होगी तो पूरी दुनिया की रस्सी लगा दो, नहीं बंधने वाले। तो 2 उंगली का अर्थ आचार्य बताते हैं, पहली उंगली है प्रयास, एफर्ट्स प्रयास, और दूसरी उंगली है कृपा मर्सी। तो जितना प्रयास करेंगे उस पर भगवान जब कृपा करेंगे तो भगवान बन सकते हैं। यशोदा मैया जब पूरा हार गई तो उन्होंने कहा आप मेरे बस की नहीं है लाला, जितनी रस्सी लगाऊं बहुत छोटी पड़ती है। तो भगवान ने कहा, मैया तुम थक गई हो? हाँ, अब तो तू ही बता तुझे कैसे बांधूं। तो भगवान ने कहा, मैया ये भी कोई बड़ी बात है, लाओ मैं ही बांध देता हूँ। उन्होंने खुद ही रस्सी बांध दी। कहा ये लो खुश। कह अरे तूने कैसे बांध दी? कहा क्योंकि मैया तूने मुझे शरणागति करी है। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं, मैं तुम्हारे हृदय में बंध जाऊंगा अगर तुम क्या कर दोगे, शरणागति। सर्व धर्मान परित्याजम मामेकं शरणं व्रजः अहम् त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं सारे धर्मों का परित्याग कर बस मेरे एक की शरण में, दो कम तिकम नहीं एकम। ये नहीं नवरात्रि आए तो दुर्गा जी की भक्ति हो गई, गणेश चतुर्थी आई तो गणेश जी की हो गई, सोमवार आए तो शिव जी की हो गई, नहीं। सर्व धर्मान परित्याजम माम एकम, अगर एक की शरण में आ गए तो क्या होगा, मैं तुम्हारे हृदय में खुद बंध जाऊंगा। और फिर भगवान जब उस उखल को लेके चलते हैं तो वहां पर दो वृक्ष थे जिनको भगवान ने गिरा दिया, जैसे ये वृक्ष है बहुत पुराने प्राचीन वृक्ष, और उसने ओखली को फंसा दिया और उन दोनों को गिराया। तो उसमें से दो व्यक्ति निकले, वो अर्जुन वृक्ष जो थे उसमें से दो दिव्य पुरुष निकले, एक का नाम था नल कुबेर और एक का नाम था मणिग्रीव। ये दोनों ही कुबेर के पुत्र थे। नारद जी के श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पे वृक्ष बन के आना पड़ा। नारद जी ने श्राप दिया था कि वो एक तालाब में स्त्रियों के साथ में बिना वस्त्रों के स्नान आदि कर रहे थे। नारद जी के आगमन पर भी उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया और अपने शरीर को नहीं ढका, तो उन्होंने नारद जी ने उनको श्राप दिया, वृक्ष जो है वस्त्र नहीं पहनता और तुम वृक्षों के जैसे हो, वस्त्र पहनने में तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, यहाँ क्रीड़ा कर रहे हो जल के अंदर, एक एक संत का सम्मान नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने श्राप दे दिया। तो उन्होंने कहा अरे भगवान हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। तो करुणामय नारद जी, नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ पृथ्वी पे वृक्ष बनो, लेकिन तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान श्री कृष्ण करेंगे। तो वो कई सालों से वहां पर खड़े थे, लेकिन भगवान के और बस घर्षण मात्र से, टकराते ही भगवान के छूते ये दोनों वृक्ष क्या हो गए, गिर गए। इतने प्राचीन वृक्ष छोटे से बालक से कैसे गिर सकते हैं? तो सब दौड़े दौड़े और देखा, अरे मेरे बालक को क्या हुआ, नंद बाबा यशोदा। तो सब ने कहा अरे पता है आपके बालक ने ओखली में बांध कर दो बड़े बड़े अर्जुन वृक्ष को गिरा दिया और इसमें से दो दिव्य पुरुष निकले। उन्होंने कहा अच्छा, हाँ देखा लाला को कुछ हुआ तो नहीं है? तो लाला हंसने लगे, नहीं नहीं मैया मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो ये सोच रहे थे लाला अभी छोटा हमारा बच्चा है, लेकिन वो स्वयं ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण थे और उन दोनों दिव्य पुरुषों को भगवान ने उद्धार किया। तो इस तरह से ये जो जिस दिन ये लीला हुई उस दिन को बोलते हैं दीपावली। क्या बोलते हैं? आप तो सोचते लक्ष्मी पूजन को ही दीपावली कहते हैं, दामोदर लीला दीपावली है। तो इसलिए उस दिन दामोदर भगवान को स्मरण करना चाहिए, वही सही मायने में भक्ति है। और राधा रानी को इसलिए पूजना चाहिए उस दिन क्योंकि राधा रानी को ये प्रिय है मास, दामोदर मास या फिर कार्तिका जो राधा रानी का नाम है उससे मास का नाम पड़ा कार्तिक मास। तो इसमें करना क्या चाहिए इस मास में, और सारे फेस्टिवल ज्यादातर इसी मास में आते हैं। देखिए आप दीपावली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, करवा चौथ, गोवर्धन पूजा, और क्या क्या आता है, बहुला अष्टमी, राधा कुंड प्रकट दिवस, बहुत सारे, मतलब भरा पड़ा है। पूर्णिमा अपने आप में ही, अमावस्या, दीपावली जैसा दिन, अनेकों उत्सव हैं। क्योंकि राधा रानी कहा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उत्साहित रहना चाहिए, और जितना ज्यादा उत्साहित रहेंगे तो उसके कारण हम भक्ति में प्रगति करेंगे। रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साहत निश्चयात धैर्यात, उत्साह हमेशा उत्साह बरकरार रहना चाहिए भक्ति का। ये नहीं होना चाहिए अरे फिर मंगलवार आ गया यार, जाना पड़ेगा, खिचड़ी भी अच्छी होती है, खिचड़ी खाने का मन भी है, फोन भी आ गया है, चल चले जाते हैं, एंड में चलेंगे 10 मिनट पहले ना खिचड़ी खा के आ जाएंगे। उत्साह खत्म हुआ तो भक्ति खत्म। उत्साह कि जो प्रवचन देने वाले हैं उनसे पहले भी भक्त आके बैठ जाए तो ये उत्साह है। उत्साह और निश्चय, निश्चित रूप से मुझे भक्ति प्राप्त करनी है अपने इस मनुष्य शरीर में। और धैर्य, नहीं भी हो रही है तो धैर्य रखो कि एक दिन हो जाएगी, कि मेरा प्रोसेस ठीक है, मेरा तरीका ठीक है, मेरा मार्ग ठीक है। तो ये जो सोचे हैं वो सही मायने में भक्ति सही से अनुगमन कर रहे हैं। तो हम कार्तिक के बारे में सुनेंगे कि कार्तिक का मास, कुछ लोग मानते हैं कि एकादशी से एकादशी तक होता है, कुछ लोग पालन करते हैं त्रयोदशी से त्रयोदशी तक, लेकिन वैष्णव जन पूर्णमासी से पूर्णमासी। अश्विन मास की पूर्णमासी जो आएगी 16 अक्टूबर से कार्तिक मास की पूर्णमासी जो आएगी 14 नवंबर, नेहरू जी का जो होता है ना जन्मदिन, चिल्ड्रंस डे, तो उस दिन 14 नवंबर तक कार्तिक मास इस बार चलेगा। तो इस मास में करना क्या चाहिए बताते हैं कि हमें पहले संकल्प करना चाहिए, अश्विन मास की पूर्णमासी को संकल्प करना चाहिए। संकल्प समझते हैं, किसी भी चीज को करने से पहले हम संकल्प लेते हैं, यस आई एम गोइंग टू डू इट, मैं करके रहूंगा, संकल्प। तो संकल्प क्या, अहम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन प्रीति अर्थम तवा देवेश दामोदरम मया सह। मतलब वो भगवान, अगर मैं आपके लिए स्नान करूं तो आप मुझे क्या करेंगे, मुझसे प्रेम करेंगे। अगर ऐसी भावना आ जाए तो सही मायने में फिर कार्तिक मास शुरू हो जाता है। तो फिर जब सुबह उठे तो ठंडे पानी से नहाना है, नवंबर में मुश्किल है ठंडे पानी से नहाना, तो गीजर की तरफ बटन जाएगा, हाथ बढ़ेगा तो फिर खींच लेना है, नहीं संकल्प किया है कार्तिक अहम करिष्यामि, नहीं 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 जाना है तो रोक लेना है, नहीं गीजर नहीं। लेकिन कोई बहुत बीमार हो जाए और उसकी स्थिति ऐसी गंभीर है कि अब वो बीमार है और माला भी नहीं कर पाएगा और गर्म पानी से नहाना है, बुखार हो गया है, तो ऐसी स्थिति में ल्यूक वार्म, हॉट नहीं लेकिन उसको गुनगुना पानी करके स्नान कर सकते हैं, ऐसा है। लेकिन स्वस्थ शरीर में, नौकरी में जा रहे हैं, प्रसाद 3 टाइम खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं लेकिन ठंडा पानी से नहीं नहा रहे, तो वो गलत है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि प्रातःकाल स्नान और वो भी ठंडे पानी से, ऐसा रहना चाहिए 1 महीने। और जप आदि को बहुत ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जैसे अगर कोई 16 माला करता है तो उसको 20 मालाएं जप करना चाहिए, कोई 20 करता है तो उसे 24 माला, 24 करता है उसे 32 माला, इस तरह से अपनी माला की संख्या बढ़ानी है, क्योंकि राधा रानी को पसंद है ये और आप चाहते हैं कि कृष्ण यशोदा मैया को जैसे मिल गए हमें भी मिल जाए, तो उसके लिए तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। भगवान को पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए, हाँ सुबह उठ करके, तो पुष्प जो है वो स्नान से पहले तोड़ने या फिर पुष्प तोड़ने के बाद में स्नान करें, क्योंकि पुष्प तोड़ने के बाद में हम अपवित्र हो जाते हैं। तो ज्यादातर देखा गया है कि लोग स्नान करके पुष्प तोड़ने जाते हैं, हाँ तो लेकिन ऐसा नहीं है, किसी और व्यक्ति से पहले या तो पहली रात्रि में पुष्प तोड़ के रख सकते हैं, नहीं तो फिर पुष्प तोड़ने के बाद में स्नान करना पड़ेगा, या तो वैसे स्नान करें कि पूरा स्नान करें, नहीं तो आचमन स्नान भी कर सकते हैं, मंत्र स्नान कहते हैं, ओम अपवित्रम पवित्रम व सर्वम अवस्थे गतोपि वास्नते पुंडरीकाक्ष सभयम अभ्यंतरम शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मंत्र स्नान, मंत्र स्नान करना है या तो फिर स्नान करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने जीवन में इसको रखना है। और आगे कहा गया है कि कैसे इस चीज में क्या क्या चीजें हमें करनी है और बताते हैं इसमें, तव ध्यानेन देवेश, तो देवेश जो है भगवान श्री कृष्ण, उनके लिए कहा गया है कि हम प्रार्थना ये मंत्र करके स्नान कर सकते हैं। तो ये क्या है स्नान मंत्र है वो बताते हैं, तव ध्यानेन देवेश जलम आस्मिनिम स्नातुम उद्येत त्वत्प्रसादाश्च मे पापम दामोदरम विनश्यतु। इसका मतलब है तव ध्यानेन देवेश, हे भगवान कृष्ण हम आपका ध्यान करते हुए स्नान कर रहे हैं। सही मायने में बताया गया है कि गंगा यमुना आदि नदियों में स्नान करना चाहिए। अभी गंगा यमुना में जाके हर एक व्यक्ति नहीं रह सकता दिल्ली का, लेकिन वो घर में क्या कर सकता है, जल पात्र के अंदर स्मरण कर सकता है कि यहाँ पर कौन है, गंगा जी है यमुना जी है, तो उस तरह से स्मरण करके, और फिर जब वो तव ध्यानेन देवेश उनका ध्यान करें भगवान दामोदर का कृष्ण का, जलम आस्मिनिम स्नातुम उद्येत, और मैं अब आपका स्नान कर रहा हूं उस जल से, त्वत् प्रसादाश्च मे पापम, आप मेरे सारे पापों को क्या कर दीजिए, दामोदरम विनश्यति, उनको सबको विनाश कर दीजिए, ऐसे करके प्रार्थना करें। अगर ये मंत्र नहीं बोल सकते संस्कृत तो बोल सकते हैं कि हे भगवान मैं स्नान कर रहा हूं, आज गंगा जल में तो नहीं कर पाया, गंगा इसमें प्रकट हो जाए और भगवान मुझ पर कृपा करे, मेरे पाप नाश हो, मैं आपका नाम जप करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, ऐसी भावना रख सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि चतुर्मास में 4 चीजें छोड़नी चाहिए। सावन के मास में क्या है, सावन वर्जित है शाकम, सावन मास में शाक सब्जी हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। फिर बताते हैं ददिदम भाद्रपदे दधियम, जो दधी है वो हमें भाद्रपद महीने में नहीं खाना चाहिए, भादो या भाद्रपद। उसके बाद बोला गया दूधम अश्विनी मासे, दूध जो है वो अश्विन मास जो चल रहा है इसमें दूध नहीं पीना चाहिए, और दालम कार्तिक वर्जिते, दाल जो है वो कार्तिक मास में वर्जित है, उड़द की दाल या फिर दो पीस में बटने वाली बीन्स जैसे राजमा या फिर चना, चने की दाल, ऐसी दालें जो दो पीस में बढ़ जाती हैं। तो इतना कन्फ्यूजन कौन सा रखें, खाएं ना खाएं, तो बेस्ट है दाल ही ना खाएं, सब्जी से काम चलाएं, या फिर सब्जी दाल भी छोड़िए तो फ्रूट्स पे रह लें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं रह सकते हैं, जरूरत है शक्ति चाहिए तो सब्जी बनाएं, रोटी बनाएं, राइस बनाएं, लेकिन दाल अवॉइड करें, पता नहीं कौन सी दो पीस की बना जाएंगे, भूल जाएंगे तो फिर वो कार्तिक पूर्ण नहीं होगा। और अगर कार्तिक नहीं करना चाहते हैं तो फिर संकल्प मत करिएगा कि कार्तिक अहम करिष्यामि मैं करना चाहता हूँ, अगर संकल्प किया है तो करना है, अब तोड़ दिया तो अपराध लगेगा कि मैंने संकल्प किया कि मैं करूंगा और मैं नहीं कर पाया, भूल गया, तो भगवान तो कृपा करेंगे लेकिन अपराध तो अपराध है, होता है हमसे। तो कोशिश करें कि हम अगर संकल्प नहीं कर सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, तो बस एक नियम का पालन करें, ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन और नाम जप, तो व्रत में नहीं आएगा लेकिन आपको कृपा मिलेगी, डिस्काउंट। व्रत नहीं कर रहे हैं लेकिन हम नाम जप ज्यादा कर रहे हैं, तो सब जो लोग सोलह माला नहीं भी करते हैं उनको कार्तिक में बेनिफिट के लिए क्या करना चाहिए, सोलह माला करना चाहिए। करेंगे सब लोग सोलह माला, हाथ खड़ा करिए जो लोग करेंगे सोलह माला, अभी कई लोग नहीं खड़ा किए हैं। कार्तिक मास में जो जो भगवान की कृपा चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं वो अलग बात है, जो चाहते हैं दोनों हाथ खड़ा करके बोलिए, करेंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई बात नहीं, 10 मिनट कार्तिक का महात्म सुनिए, उसको सुनने के बाद जिन्होंने नहीं खड़ा किया है वो भी खड़ा करेंगे अपने हाथ को। कार्तिक में कहा गया है, स्कंद पुराण में वर्णन है, कार्तिका खलो वै मासम सर्व मासेषु च उत्तमम पुण्यम परमम पुण्यम पावनानां च पावनम। देखिए क्या श्लोक है स्कंद पुराण का, कार्तिका खलो वै मासम, कार्तिक मास बड़ी कृपा से प्राप्त हुआ है, सर्व मासेषु च उत्तमम सारे महीनों में उत्तम मास है, पुण्यम परमम जो है ये पुण्यों में भी पुण्य प्रदान करने वाला है। एक होता है 10% डिस्काउंट, एक होता है 50% डिस्काउंट, हमारे गुरुदेव कहते हैं कार्तिक मास है 100% डिस्काउंट, कुछ भी करेंगे अनजाने में तो कृपा ही मिलनी है। तो इसमें संकल्प नहीं किया और भक्ति करने लगे तो इसमें बहुत कृपा मिलने वाली है, 100% कृपा, लेकिन जो संकल्प करके मिलेंगे करेंगे उनको 1000% कृपा मिलेगी। तो अभी 100% भी से काम चले तो फिर संकल्प ना करके कर सकते हैं। पावना नाम च पावनम, जो पवित्र है उसको भी पवित्र करते हैं, धाम को भी पवित्र करते हैं, नाम को भी पवित्र करते हैं, व्यक्ति को भी पवित्र करते हैं, बहुत ही पावरफुल ये महीना है। कहते हैं न कार्तिका समो मासो, कार्तिक के जैसा कोई मास नहीं है, न कार्तिका न कलयुगा समा युगा, कलयुग के जैसा कोई युग नहीं है, क्यों, क्योंकि कलयुग में इतने दुख हैं तभी व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, द्वापर युग में दुख नहीं थे तो फिर महाभारत जैसे क्रीड़ाएं होती हैं, लेकिन जब दुख होते हैं तो व्यक्ति सोचता है ये संसार बेकार है, दुखालयम है, मुझे भगवान का नाम लेना है। न वेदा सदर्शम शास्त्रम, वेदों के जैसा कोई शास्त्र नहीं है, इसीलिए कृष्ण ने कहा वेदर्श सर्वम अहम एव वेद्यो, वेदों में जानने योग्य मैं हूं। तो वेद शास्त्रों में उत्तम है, वेद महीनों में उत्तम है कार्तिक, और युगों में उत्तम है कलयुग। और कहा न तीर्थम गंगाए च समम, गंगा के जैसा कोई तीर्थ नहीं है। तो इस तरह सोचिए, तीर्थों में जो गंगा है, युगों में जो कलयुग है, शास्त्रों में जो वेद है, मासों में वो कार्तिक है, ऐसा वर्णन स्कंद पुराण में आया है। तो आगे कहते हैं कार्तिका पर्वरो मासो वैष्णवनम प्रियम सदा, कार्तिकम स्कलम अस्तो भक्त्या सेवत वैष्णवः, कार्तिक पर्वरो मासो, ये जो कार्तिक मास बड़ी ही आसानी से हमें प्राप्त हो रहा है, इसमें वैष्णव नाम प्रियम, इसमें वैष्णवों के प्रिय बनने की कृपा हमें प्राप्त करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा साधु सेवा, हरि नाम, कथा श्रवण, ये जो ट्यूसडे प्रोग्राम है कार्तिक में रेगुलर चलना चाहिए, हर रोज क्लास होना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो जिस एरिया में रहते हैं उसके आसपास भक्त अपने अपने घरों में क्लास चलाएं, नहीं नहीं चला सकते हैं तो भागवत या भगवत गीता ग्रंथ को खरीदें और अपने घर में मस्तक पे लगा के उसे पढ़ाई करें। रोज कुछ तो कुछ पढ़े, कानों में डालें, हृदय में डालें, बहुत कृपा मिलेगी। हाँ, जैसे अगर कुछ जंग लग जाए तो एक रेगमाल रगड़ने से जंग उतरता है। ये जंग उतारने का महीना है, इसमें रेगमाल सिर्फ खरीद के रखना है, अपने आप रगड़ने वाले हजारों मजदूर उसको रगड़ेंगे। ये कृपा है इसके अंदर, तो बहुत ही पावरफुल ये महीना है। इसको ऊर्जा व्रत भी कहा गया है और इसके अंदर भक्त कुछ स्पेशल तरीके के नियम भी अपने जीवन में पालन करते हैं। जैसे एक व्रत, एक वक्त खाने का व्रत, सुबह खाएंगे या शाम को खाएंगे, दोनों टाइम नहीं खाएंगे या तीनों टाइम नहीं खाएंगे। कहते हैं तीन वक्त जो खाता है वो भोगी होता है, दो वक्त जो खाता है वो रोगी होता है, नहीं सॉरी, तीन वक्त जो खाता है वो रोगी होता है, दो वक्त खाता है वो भोगी होता है, एक वक्त खाता है वो योगी होता है। तो इस महीने में योगी बनने का चांस है कि हम बन सकते हैं, कृपा भी मिलेगी, योगी भी बन जाएंगे, वेट भी कम हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से इस महीने में हम कर सकते हैं। हाँ, तो बताते हैं और कौन से नियम है। प्रवर्तनाम चा भक्षणम कार्तिका नियम कृतः अवश्यम कृष्ण रूपत्वम प्राप्यते मुक्तिदम शुभाम। प्रवर्तनम चा भक्षणम, जो वस्तु खाने में बड़ी प्रिय लगती है, तो लोगों को मिठाई पसंद होती है, कुछ लोगों को फ्रूट्स पसंद होते हैं, फ्रूट सैलेड, जूसेस, तो प्रवर्तनम चा भक्षणम, जो भक्षण करने में बड़ा प्रिय है, कार्तिके नियम व्रतः, उसका व्रत लेना चाहिए। कार्तिक में क्या करना चाहिए, अवश्यम कृष्ण रूपत्वम, वो व्यक्ति अपना शरीर छोड़ने के बाद कृष्ण धाम को प्राप्त करेगा, उनके जैसे रूप को प्राप्त करेगा, प्राप्ते मुक्तिदम शुभम, उसको मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी अगर वो अपनी प्रिय वस्तु इस महीने छोड़ देता है। तो ये संकल्प है कि मैं इस महीने मिठाई नहीं खाऊंगा, मैं इस महीने फल नहीं खाऊंगा, मैं इस महीने जूस नहीं पीऊंगा। दिवाली का महीना आएगा, लोग मिठाई लेके आएंगे, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, तो ये बड़ा मुश्किल है, यहाँ से लार भी बाहर आएगी, अरे मिठाई गुलाब जामुन घर वाले खा रहे होंगे और हम व्रत कर रहे होंगे। तो मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, भगवान प्राप्त करने हैं तो नियम तो पालन करने पड़ेंगे। तो अपनी कोई प्रिय वस्तु, और फिर इसका उद्यापन करना होता है। कार्तिक समाप्त होने के बाद में जो प्रिय वस्तु है वो वैष्णवों को दान में देनी होती है। जैसे आपने अगर मिठाई छोड़ी है तो भक्तों को बुला के घर पे मिठाई खिलाओ, या फिर फल छोड़े हैं तो फल खिलाओ, या फिर ट्यूसडे प्रोग्राम में ले आओ, यहाँ सबको बांट दो। हाँ, और फिर इस तरह से भक्तों को खिलाने के बाद में ही उस चीज को ग्रहण करना चाहिए, या फिर ग्रहण करने की जल्दी है तो ऐसा कर सकते हैं कि स्मरण करें कि मैं इतने किलो बर्फी, इतने किलो प्रसाद, इतने किलो फल बांटूंगा, ऐसा भावना रख के ग्रहण कर लें और फिर बाद में बांट सकते हैं। तो कुछ भी नियम पालन करना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, कहा है दामोदरम अष्टकम नामम स्रोतम दामोदर अर्थनम नित्यम दामोदर अखरासी पठेत सत्यव्रतम उदितम। इस पूरे महीने में मैं दामोदर अष्टक का पाठ करूंगा, एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा कि मैं दामोदर अष्टक को ना बोलूं। सत्यव्रत महाराज के लिए, मुनि सत्यव्रत के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर इस पाठ को प्रदान किया है, दामोदर अष्टकम। तो ये आठ अष्टकम पढ़ने से बहुत कृपा मिलती है, एक भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन दामोदर अष्टकम पढ़े नहीं हम लोग, चाहे सुबह या शाम, दोनों समय में कोई भी एक समय चुन के पढ़ सकते हैं। आगे कहा गया है सर्वधर्मान परित्याजम कार्तिके केशवम अग्रतः शास्त्र अवतरण पुण्यम स्त्रोत्यम चहा महामुने। तो यहाँ कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ करके हरि कथा सुननी चाहिए। ऐसे नियम, ये वैष्णवों के नियम बताए गए हैं। बाकी भौतिक जगत के नियम क्या होते हैं, तेल नहीं खाएंगे, दाढ़ी नहीं बनाएंगे, कपड़े नहीं धोएंगे, ये भौतिक नियम है। आध्यात्मिक नियम है हरि कथा सुनेंगे, भक्ति करेंगे, दामोदर अष्टक पढ़ेंगे, फल नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, एक वक्त नहीं खाएंगे, जमीन पे सो जाएंगे, ऐसे नियम ये वैष्णवों के नियम है। आगे कहा है स्नानम जागरणम दीपम तुलसी वनः पालनम कार्तिके ये प्रफुल्लांति ते नरः विष्णु मूर्तये। स्नानम जागरणम दीपम तुलसी वन पालनम, इसमें सारे आ गए। स्नान, सुबह उठकर स्नान, जागरण रात्रि जागरण, किसी एक दिन चुने कार्तिक के महीने, रोज तो नहीं कर पाएंगे कि पूरी रात्रि जागकर भगवान के नामों का जागरण किया जाए। दीपम, और रोज भगवान को एक दिया दिखाना चाहिए रोज। तो दिए के अंदर जो तेल डाला जाए वो तिल का तेल होना चाहिए या फिर देसी घी होना चाहिए। सरसों का तेल अपवित्र है, उसमें दिए में इस्तेमाल नहीं होता। दीपावली में लगा सकते हैं, लेकिन जिस दिए से भगवान दामोदर की पूजा हो वो तिल का तेल या फिर घी का दिया होना चाहिए। और तुलसी वन पालनम, तुलसी को घर में बोना चाहिए, रोज तुलसी का एक पत्र तोड़ के भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए, ऐसे नियमों को हमें पालन करना है। और बताते हैं कि दीप दान करने का इतना फल है कि वो व्यक्ति नरह विष्णु मूर्ति है सारूप्य मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम जाता है, चार हाथ निकल जाते हैं और विष्णु जन आते हैं लेने, चलो चलो भाई तुमने कार्तिक निभाया है अब चलो भगवत धाम, भगवान बुला रहे हैं। ऐसे नहीं कार्तिक समाप्त होती आ जाएंगे लेने, आप डर जाओगे, अरे हम हमें ले जाएंगे हमारे घर का क्या होगा, जब शरीर छोड़ेंगे तब की बात होगी, अभी नहीं ले जाएंगे। हाँ तो इसमें कहते हैं, एक कथा आती है तो स्कंद पुराण की ये कथा है, उसमें कहते हैं एकादशी परेर्दातम दीपम प्रज्वलम मूषिकहा मनुष्यम दुर्लभम प्राप्यम परमम गतिम अवापसहा। एकादश परेर्दातम, एकादशी का दिन था, दीपम प्रज्वलम मूषिकहा, और क्या हुआ किसी व्यक्ति ने घी का दिया जला के भगवान के आगे रखा, दिए की ज्योति हवा से बुझ गई और दिए के अंदर जो घी था वो क्या था, भरा हुआ था। तो वहां मूषिकहा एक चूहिया आई या चूहा आया और उसने आकर के सोचा बड़ा मीठा मीठा घी है, तो उसने सोचा चलो खा लेता हूँ घी को, तो उसने अपने मुंह से उस घी की बत्ती को खाना शुरू किया मीठा घी, और क्या हुआ कि घी जब ऊपर चढ़ा तो दोबारा से ज्योति प्रज्वलित हो गई, जब प्रज्वलित हुई तो उसकी जो मूछे थी मूषिकहा की उसमें लग गई क्या, आग अग्नि, और अग्नि में उसकी यहां लगी तो उसने अपनी पूंछ से उसको बुझाना चाहा, लेकिन जब बुझाया तो अग्नि इतनी तेज थी कि पूंछ में भी आग लग गई, जब आप पूंछ में आग लगी तो जलते हुए जंप करने लगी और वो जो दिए की बत्ती थी उसके मुंह में चिपकी हुई थी और दिया ऐसे ऐसे घूम रहा था और वो जंप कर रही थी, और भगवान क्या सोच रहे हैं ये दीप दान कर रही है मेरे को, भगवान बड़े कृपालु, 100% डिस्काउंट इस महीने में। एकादशे परर्दातम दीपम प्रज्वलम मूषिकहा, मूषिका ने दीप प्रज्वलित कर दिया, क्या हुआ मनुष्यम दुर्लभम प्राप्यम, जो मनुष्य शरीर दुर्लभ है वो कितनी बार चूहा बिल्ली कुत्ता शेर पेड़ बनने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है वो उसको डायरेक्ट मिल गया, और वो भी कहाँ मिला, किसी भक्त के घर में, जहां पर बचपन से ही क्या हो रहा था भक्ति का संदेश दिया जा रहा था, मूर्ति पूजा हो रही थी, भगवान की सेवा हो रही थी, भगवान के विग्रह की सेवा हो रही थी, और फिर उसने जब अपना शरीर छोड़ा तो क्या हुआ परम गतिम अवापसा, उसको भगवत धाम प्राप्त हुआ। तो देखिए अनजाने में किया गया दीपदान भी फल देने वाला है, तो जानकर संकल्प करके जो करेंगे उनको क्या मिलने वाला है। एक हरि नाम की माला 1000 गुना फल देती है, और अगर वो वृंदावन जैसे धामों में की जाए तो 10,000 गुना फल देती है। तो आप सोचिए कितना फल मिलने वाला है इस कार्तिक मास में हरि नाम का। तो ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम स्मरण करिए, और कहने को तो इसमें बहुत कुछ है, पर एक छोटी सी कथा सुना करके फिर हम दामोदर अष्टकम भजन गाएंगे। बताते हैं कि एक व्यक्ति था चोल देश में रहने वाला, सुना आपने चोल नामक एक देश था, उसमें कांचीपुरम भी बोला जाता है उस स्थान को। तो कांचीपुरम साउथ इंडिया में पड़ता है चेन्नई से, और जब हम मदुरई की तरफ आते हैं तो बीच में एक रास्ते में एक जगह है कांचीपुरम। तो कांचीपुरी में रहने वाला चोल राजा था, उसी के नाम से चोल राज्य बड़ा प्रसिद्ध है। तो चोल राजा जो थे वो एक दिन भगवान विष्णु को पूजा करने आए, कार्तिक के महीने शुरू होने वाला था, और उन्होंने देखा कि वहां पर एक भक्त आ गया है, और उन्होंने तुलसी बनाई थी, पता किसकी, चांदी की तुलसी पत्र, भगवान के लिए सिंहासन, भगवान के लिए मुकुट, भगवान के लिए बाजूबंद, अनेकों चीजें सोने की बनाकर, और बड़े बड़े थालों में भर के राजा चोल आ रहे हैं भगवान की सेवा करने। सारे मंदिर की भीड़ हटाई गई, राजा ने अपनी सारी भेंट समर्पित करी भगवान को। पीछे से एक विष्णुदास नाम का ब्राह्मण आया, वो बेचारा गरीब कुटिया में रहने वाला, उसने एक तुलसी वृक्ष से काफी सारी पत्तियां चुनी और आकर के भगवान के ऊपर समर्पित कर दी। जब समर्पित की तो इसकी तुलसी जो चांदी की थी वो छुप गई, हरी वाली जो तुलसी थी उन्होंने पूरा उसके ऊपर क्या घेरा बना लिया। अब बड़ा ही इसको क्रोध आया, अरे विष्णुदास तेरे में दिमाग नहीं है, मैं राजा चोल मैं यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ भगवान की, और तू गरीब भिखारी आकर तूने यहाँ पर ये क्या कर दिया, तुलसी के पत्ते फेंक दिए, ये झाड़ फेंकने से तूने क्या कर दिया, अपवित्र कर दिया स्थान को। तो विष्णु ब्राह्मण को भी गुस्सा आया, उसने कहा सही मायने में यही विष्णु की सेवा है तुलसी अर्पित करना। कहा तुलसी नहीं, चांदी की तुलसी अर्पित की जाती है। मूर्ख ब्राह्मण, तूने कभी भगवान को देखा है? कहा आपने नहीं देखा होगा। ऐसे दोनों लड़ने लग गए। तो सारे ब्राह्मण जो बाकी थे वहां पर, वो बोले देखिए देखिए राजा गुस्सा मत करिए, एक काम करते हैं। राजा बोला मैं बताता हूँ क्या काम करते हैं, कार्तिक का महीना आने वाला है और इस महीने में मैं भगवान की प्रार्थना करूंगा और ये भी भगवान की प्रार्थना करें, देखते हैं भगवान किसके लिए प्रकट होते हैं। तो अभी क्या हुआ, जो राजा चोल थे वो भगवान के लिए विशेष यज्ञ किए। देवताओं के बड़े ही पुराने एक भक्त हैं जो यज्ञ करने में माहिर हैं, मुदगल ऋषि, उनको बुलाया गया और कहा कि अब आप करिए यज्ञ। उन्होंने विशेष सामग्री का आयोजन किया, विशेष प्रकार की लकड़ियां मंगाई गई, विशेष प्रकार के उच्चारण करने वाले ब्राह्मण, शुद्ध देसी घी, गाय का दूध और पंचगव्य मंगा करके वहां पर यज्ञ शुरू हुआ। अभी यज्ञ हो रहा है और रोज सुबह अखंड यज्ञ चल रहा है पूरे कार्तिक के महीने। और विष्णुदास ब्राह्मण बेचारा गरीब, ये तुलसी तोड़ता है, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, दामोदर अष्टकम गाता है, दीप दान करता है, भगवान के लिए एक वक्त खुद खाता है, एक वक्त भोग बनाता है, बस कुछ ज्यादा नहीं। अब ये रोज भोग बना के जब भगवान को अर्पित करता और आंख खोल के देखता, तो शाम को तो बेचारा ब्रेकफास्ट करने वाला था, सुबह तो किया नहीं, दोपहर में किया नहीं, एक ही टाइम खाएगा, देखता तो भोग की थाली में से भोग गया, बड़ा दुख होता इसको, कहाँ चला गया, कौन चूहा ले गया, कौन जानवर ले गया, भूखा रह गया कि भाई चलो संध्या का समय मैं दोबारा कुकिंग में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे गायत्री करनी है, हरि नाम जप करना है, शास्त्र पढ़ने हैं। दूसरे दिन फिर भोग बनाया, फिर से गायब हो गया। ऐसे 7 दिनों तक चलता रहा। जब 7 दिनों तक कॉन्टिन्यूसली रोज उसका भोग कोई ना कोई व्यक्ति उठाता रहा, तो एक दिन उसने सोचा कि आज अब बहुत हो गया, आज पकड़ना पड़ेगा, कौन रोज, मैं 7 दिनों से भूखा हूं, भगवान का भोग उठा के प्रसाद ले जाता है कोई, आज पकड़ लूंगा। तो इसने जैसे ही भोग अर्पित किया, आंख बंद करके एक आंख खोल के रखी, कौन उठाता है, तो देखा कि चांडाल होते हैं, चांडाल आता है और रोज इनके भोग को उठाकर ले जा। अब ये पीछे पीछे भागा चांडाल के, ओ रुको, ओ चांडाल रुको रुको, और चांडाल तेजी से भाग रहा है, पतला दुबला, शरीर की हड्डी बाहर आ रही है और भाग रहा है उसके पीछे, कहा रुको रुको रुको, ओ भागता यार, भागते भागते गिर गया। जब गिर गया तो ये बोलते हैं विष्णुदास ब्राह्मण, अरे भैया मैं तो कह रहा था घी लगा लेते, सूखी रोटी खा रहे हो 7 दिन से, घी लगा के खा लो, ये लो घी ले लो, अचार ले लो, सब्जी ले लो, तुम सूखी रोटी खा रहे हो, ऐसे करके उसके पीछे भागे। और उसके वो देखा जब वो बेहोश हो गया है, कुछ बोल नहीं रहा, तो पानी छिड़का, वो फिर भी नहीं उठा तो पंखा करने लगे। और जब उस चंडाल की सेवा कर रहे थे तो अचानक एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वो कौन थे? स्वयं भगवान नारायण। भगवान नारायण प्रकट हुए, शंख चक्र कमल गदा लेकर। भगवान ने कहा वाह विष्णुदास, बहुत सुंदर, क्या तुम्हारी अटूट श्रद्धा है, कार्तिक के नियमों को तुमने दृढ़ता से निभाया है, बोलो क्या चाहिए। आप भगवान बस आपके चरण मिल गए, अब इस भक्त को क्या आवश्यकता है। भगवान ने कहा ये लो तुम्हारे लिए क्या आया है, लो तुम्हारा गिफ्ट लो। क्या गिफ्ट था? विष्णु लोक से विष्णु विमान नीचे उतर रहा था और उसमें विष्णु दूत थे, और उन विष्णु दूतों ने ऐसी माला विष्णुदास के गले में अर्पित की और कहा विराजमान हुई है, चलिए विष्णु लोक को। कोई यमदूत नहीं, कोई रस्सी नहीं, कोई पिटाई नहीं, कोई अंतकाल का दुख नहीं, कोई शरीर छोड़ने का कष्ट नहीं, सीधा स्वशरीर में भगवत धाम प्रवेश कर गया। और ये सबने देखा, पूरे गांव राज्य ने देखा। राजा चोल ने कहा इतने 108 ब्राह्मण मिलकर यज्ञ कर रहे हैं और ये चला गया सीधा कहां, विष्णु धाम, और मैं रह गया यज्ञ करता हुआ, कहां इसका क्या फल है। तो उन्होंने कहा देखिए अब आपको समझना चाहिए राजा, इस संसार का कोई भी यज्ञ, इस संसार का कोई भी कर्म, इस संसार की कोई भी पूजा, नवरात्रि पूजा, शिवरात्रि पूजा, कोई भी यज्ञ करिए, बड़े बड़े आर्य समाजी यज्ञ होते हैं, किसी भी अनुष्ठान से वो फल नहीं मिलने वाला जो फल कार्तिक में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी अर्पित और दीप अर्पित करने से प्राप्त होता है। ये वहां पर उन्होंने समझाया, वो बोले अच्छा अब गलती हो गई। और फिर उन्होंने सब कुछ बंद करके दोबारा से वही कार्य शुरू किया, तुलसी अर्पित करना और दीप अर्पित करना। और इसको करने से क्या हुआ, अंत काल में उनके भी पास क्या आए, दो दो विष्णु दूत आए और उनको लेकर के चले गए, और ऐसा वर्णन है कि उनको दोनों को पुण्यशील और सुशील नाम का भक्त बनने का मौका मिला। पुण्यशील और सुशील, जो जय और विजय है, ऐसे भगवान के दो द्वारपाल, एक राजा बना और एक भक्त ब्राह्मण बना। तो सोचिए कार्तिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको श्रेष्ठता पूर्वक निभाएं हम सभी भक्त। और अभी हम दामोदर अष्टकम का भजन गाएंगे, सभी लोगों के पास प्राप्त हुआ है दामोदर, दे रहे हैं दामोदर अष्टकम का आपको दिया जा रहा है, 10 मिनट में इसको भजन गाएंगे। अच्छा, तो अभी हम लोग दामोदर अष्टकम गाएंगे। सबको मिल गया है दामोदर अष्टकम, तो इसके शब्द यहां से शुरू कर रहे हैं, नमामि शरम से। तो ये रोज गाना है नियम पूर्वक, तो ये सत्यव्रत मुनि के द्वारा रचित है, भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने गाया है इसको। नमामि शरम सचिदानंद रूपम लसत् कुण्डलं गोकुले ब्रजमानम्। नमामि शरं सचिदानन्दरूपं लसत् कुण्डलं गोकुले ब्रजमानम्। यशोदा पियो लोकलादवमानम् परमृष्टमत्यन्तो दूरतगोप्या। यशोदा पियो लोकलादवमानम् परमृष्टमत्यन्तो दूरतगोप्या। रुदन्तं महुर्नेत्रं युग्मं रजन्तम् करं भुजयुग्मेण सातङ्कनेत्रम्। रुदन्तं महुर्नेत्रं युग्मं रजन्तम् करं भुजयुग्मेण सातङ्कनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पातिरेकङ्कण्ठम् स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धम्। मुहुश्वास कम्पातिरेकङ्कण्ठम् स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धम्। इति द्वस्तलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषनिमज्जान्तम् अख्यं पयन्तम्। इति द्वसलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषनिमज्जान्तम् अख्यं पयन्तम्। तदीर्येषितैर्गेशोर्भक्तिर्जितत्वम् पुनं प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। तदीर्येषितैर्गेशोर्भक्तिर्जितत्वम् पुनं प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देव मोक्षां न मोक्षां वदिं वां न चान्यं वरेऽहं वरेषदपिहा। वरं देव मोक्षां न मोक्षां वदिं वां न चान्यं वरेऽहं वरेषदपिहा। इदं ते वपुनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्यं विरसत किं नये। इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्यं विरसत किं नये। इदं ते मुखम्बोजमत्यन्त नीले व्रतं कुन्तले स्निग्धा वर्चस्य गोप्या। इदं ते मुखम्बोज अत्यन्त नीले व्रतं कुन्तले स्निग्धा रक्तस्य गोप्या। मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्तं धर्मे मनस्य विरासत मालं लक्ष्लाभे। मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्तं धर्मे मनस्य
नमो देवदामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्धो प्रबोधो खजाला विद्मग्नम् नमो देवदामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्धो प्रबोधो खजाला विद्मग्नम् कृपा दृष्टि विष्टातीतिनां वतानो गगने शमामज्ञं मेदश्रिदशये कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनां वतानो गगने शमामज्ञं मेदश्रिदशये कुबेरात्मजो बद्धुर्भूत्वं यदत्वं तयो मोचितो भक्ते भाजो कृतौ च कुबेरात्मजो बद्धुर्भूत्वं यदत्वं तयो मोचितो भक्ते भाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकम्मं प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरे तथा प्रेम भक्ति स्वकम प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहे मे अस्ति दामोदरे नमस्ते स्तु दामने स्फुदीप्ति दामने तदीयो दरायाता विश्वस्य दामने नमस्ते सुदामने स्फुदीप्ति दामने तदीयो दरायाता विश्वस्य दामने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर जय यशोदा 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 जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय जय गौरनिता गौरनिता गौरनिता, जय गौरनिता, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम, जय वृंदावन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, नितय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नितय गौरा हरि श्री राधा गोविंद भगवान की।